शुक्रिया। तो तस्हील बहश जेवर अभी हमारी चल रही है, इसमें हम किताब सुलूक वल एहसान में मुख्तलिफ जो सब टॉपिक्स लिखे हुए हैं वो कवर कर रहे हैं एक करके अल्हम्दुलिल्लाह। इखलाक जमीमा और उनका इलाज ये हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद फिर इखलाक हमीदा और हुसूल के तरीके ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल कर लिया, और हुसूल के तरीकों को तफसील से बयान करने के बाद फिर हजरत इखलाक जमीमा और उनका इलाज। यानी अच्छा ये तो खैर सॉरी ये तो मेरी बुक में जरा सा पेज में प्रॉब्लम हुई हैं, तो ये टॉपिक इखलाक हमीदा वाले टॉपिक को ख़त्म करने के बाद दरअसल मेरे पास ये कुछ प्रिंट आउट्स हैं पेजेस के, तो इनके हासिल करने के तरीके हमने पढ़ लिए थे। इनके अंदर फिर नफ्स के मुताबिक भी हजरत ने तफसील लिखी अकॉर्डिंग हो रही है, और बाद भी रुकावट वाले रास्ते में बनती है नेक बनने के रास्ते में वो आम लोग लोग बनते हैं जिनके साथ हमारा हमारा हमारी इंटरेक्शन होती है, लेन देन होता है, तो उनके बारे में भी हजरत ने बहुत अच्छी नसीहतें लिखी थी कि किसके साथ दोस्ती बनानी चाहिए किसके साथ दोस्ती नहीं बनानी चाहिए। और इसके तहत आपको ये भी खास तौर पर बताया था कि अगरचे कि हम तो बहुत सारी गलतियां कर चुके हैं ऐसी जगहों पर दोस्ती बना चुके हैं जहाँ पे दोस्तियां नहीं बनानी चाहिए थी, और जब एक दफा बन चुकी होती है तो उसमें से निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ी उसके लिए कन्विक्शन चाहिए होती है, बड़ा सपोर्ट चाहिए होता है पुरानी दोस्तियों को जो गलत दोस्तियां थी बुरी दोस्तियां थी उनको छोड़ने के लिए। लेकिन कम अज कम हम अपनी औलादों को आज से इरादा कर लें कि हम ऐसे उनकी जहन साजी करेंगे और उनको ऐसे समझाएंगे कि वो सिर्फ अच्छी जगहों पर दोस्तियां बनाएं और गलत लोगों के साथ दोस्तियां ना बनाएं। इसके बाद जो टॉपिक इन्होंने इसी डिस्कशन में लिखा है वो है शेख कामिल के साथ ताल्लुक। तो इसमें जो पहली सब हेडिंग थी पीरी मुरीदी का बयान, तो इसके बारे में हमने पिछले हफ्ते बात शुरू कर दी थी कि ये जो लफ्ज़ है पीर का ये कहाँ से आया और मुरीद का जो लफ्ज़ है इसकी क्या हकीकत है। ठीक है, इसमें आपको फारसी अरबी इन सब चीज़ों के बारे में कुछ बताया था, और लफ्ज़ मुरीद का सीगा क्या बनता है, क्योंकि सीगे की समझ से जो है ना वो बात की अच्छी समझ भी आ जाती है। बताया था आपको कि ये मुरीद जो है वो अरादा युरीदु इरादतन फहुवा मुरीदुन, बाबे इफ़ाल से इस्म फाइल का सीगा बनता है, इरादा करने वाले को मुरीद कहते हैं। ठीक है, तो इसकी हकीकत के बारे में चंद बातें हुई थी, कुछ सवालात भी आप लोगों ने किए थे। फिर इसके बाद शेख कामिल की अलामात हजरत ने लिखी हैं। ठीक है, अच्छा पीरी मुरीदी के बयान के अंदर तो चार फायदे लिखे थे, तो वो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस कर लिए थे। शेख कामिल की अलामात, ठीक है, तो टॉपिक के शुरू में भी बात हुई थी कि जी शेख होता क्या है, ठीक है, किसको शेख कहते हैं, इसकी लफ्जी माने क्या होते हैं और इसके इस्तिलाही माने क्या होते हैं। उसके बाद फिर लफ्ज कामिल, ठीक है, तो कामिल क्या चीज होती है, कामिल का मतलब तो मुकम्मल होता है जिसमें कि कोई नुक्स ना हो, नाकिस के ऑपोजिट कामिल होता है। तो शेख कामिल से क्या मुराद है, क्या कोई भी शख्स कोई भी इंसान कामिल हो सकता है कि उसके अंदर कोई भी नुक्स ना हो। ठीक है, तो उसमें समझाया था कि नहीं, यहाँ पर मुराद जो है ना वो लफ्जी मानी नहीं है बल्कि यहाँ पर इस्तिलाही मानी है, और जिसकी के इन्होंने तारीफ पूरी लिखी है आगे। ठीक है, तो लफ्जी माना नहीं है कि जी कामिल शख्स है इसके अंदर कोई नुक्स नहीं हो सकता और नाउज़ुबिल्लाह ये खुदा के दर्जे पे पहुंच गया है या इंसानों में से जो सबसे कामिल इंसान थे वो तो सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम थे। ठीक है, तो कोई उम्र तो फिर शेख कामिल से क्या मुराद, तो इस्तिलाही मानी मुराद है यहाँ पर। ठीक है, और वो हजरत ने यहाँ पे तफसील से लिखे हैं, एक्चुअली बहुत तफसील तो इधर नहीं लिखी है, दूसरी किताबों में अगर आप देखेंगे तो और भी ज्यादा इसकी तफसील है, लेकिन चूंकि बहश्ती जेवर जो है वो एक अवामी लेवल की किताब है तो इस वजह से हजरत ने उतनी सारी तफसीलें यहाँ तफासिल यहाँ पर नहीं लिखी है, दूसरी किताबों में देखी जा सकती हैं। तो फरमाते हैं कि अगर किसी शेख से इस्लाही ताल्लुक रखने का इरादा हो, ठीक है, असल चीज क्या है, यहाँ पर जो कीवर्ड है ना जिसको कि हमें समझने की जरूरत है वो है इस्लाही ताल्लुक। ठीक है, ये है असल कीवर्ड कि शेख के साथ जो आप ताल्लुक बनाते हैं ये किस लिए होता है, ये इस्लाह के लिए होता है। ठीक है, ये बरकतें हासिल करने के लिए नहीं होता, ये दुआएं करवाने के लिए नहीं होता। ठीक है, या जो क्या कहते हैं शोबेबाजियां देखने के लिए नहीं होता कि जी हमारे शेख साहब हवा में उड़ते हैं। ठीक है, या हमारे शेख साहब तो पानी पर चलते हैं। ठीक है, या तो उनको जो है वो ज्यारतें होती हैं। ठीक है, जरा होल्ड कीजिएगा, अभी एक थोड़ा सा काम करके वापस आता हूँ। ठीक है, तो इस्लाही ताल्लुक जो है ना, ये की वर्ड है, इसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। अगर आपने इस्लाही ताल्लुक बनाया नहीं है तो फिर आपकी इस्लाह नहीं हो सकती, ठीक है, फिर कुछ और ही होगा। जैसे कि अमूमी तौर पर हम लोग करते हैं कि इस ताल्लुक से हमें फायदा क्यों नहीं होता, क्योंकि हमने इस्लाही ताल्लुक नहीं बनाया होता, हमने और रीजन की वजह से ताल्लुक बनाया होता है और नीयतों की वजह से ताल्लुक बना लिया होता है। तो असल नीयत जब फौत हो गई या असल नीयत करी ही नहीं तो फिर कैसे फायदा होगा, ठीक है। यहाँ तो मामला ही इन्नमल आमालु बिन्नियात का होता है, तो नीयत ही गलत है या खराब है तो फिर इस्लाह नहीं होती। और दूसरी बात यह कि इस्लाही ताल्लुक के लफ्ज से ये बात जाहिर है कि आप इस्लाह चाहते हैं, ठीक है, इस्लाह। और इस्लाह जो है वो कहां पर होती है, वो कब होती है, जब इस्लाह की जरूरत हो, इस्लाह की जरूरत महसूस हो कम अज कम, ठीक है। जहां पर इस्लाह की जरूरत ही महसूस नहीं होती, ठीक है, जहां पर हम समझते हैं कि जी हमें तो हम तो कामिल हैं, हम पहले ही कामिल हैं या हम तो सबसे अच्छे हैं, तो फिर वहां पर इस्लाह कैसे होगी, ठीक है। तो नियत का सही होना और नियत सही होने के लिए प्रीरिक्विजिट क्या है कि अपने आप को लायक इस्लाह समझना, अपने आप को लायक इस्लाह समझना, ठीक है। तो इस्लाह जो है वो खराब चीज की होती है, अच्छी चीज की इस्लाह नहीं होती, ठीक है ना। तो अपनी हकीकत को देखना, जब भी हम आईने के ऊपर, हमने कितने घंटे सर्फ किए हैं, वो जो हदीस थी अलमोमिनो मिरातुल मोमिन, उसके ऊपर इतने घंटे सर्फ करने की क्या वजह थी, उसकी वजह यही थी कि इंसान को अपने ऐब जो है वो आईने के बगैर नजर नहीं आ सकते, ठीक है, ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें ऐसा बनाया ही नहीं है कि हम बगैर आईने के अपने आप को देख सकें, ठीक है। तो जब तक आईना ना होगा तो फिर हमें कहाँ से यानी अपने ऐब नजर आएंगे। तो फिर इस्लाह की जरूरत कब महसूस होती है, जब हम अपने आप को अपने ऐबों को देख रहे हो किसी न किसी नजर से, ठीक है, थोड़ी नजर आती है, शुरू में इंसान को थोड़े ऐब नजर आते हैं, ठीक है, ये भी एक हमारी नेचर है कि हम एकदम से अपने सारे ऐब देखने पर कादिर हैं भी नहीं, ठीक है, हमें तो थोड़े ऐब नजर आते हैं। लेकिन जब थोड़े ऐब की इस्लाह के लिए हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो क्या होता है कि डॉक्टर तो अपनी अपने तजुर्बे के साथ और अपने जो उसको अल्लाह ताला ने समझ दी होती है, इल्म दिया होता है, मुशाहिदा दिया होता है, ठीक है, एक्सपोजर दिया होता है, तो उससे जब वो हमें देखते हैं ना, तो फिर ऐब हमारे मजीद खुलते हैं। इसी को किसी शायर ने इस खूबसूरती से पेश किया कि हम तो समझे थे मसहफी होगा कोई जख्म, ठीक है, कि मसहफी शायर का नाम है, उसने तखल्लुस किया, तखल्लुस किया क्या है कि मैं तो समझता था कि कोई थोड़ा बहुत जख्म होगा मेरे अंदर, कोई थोड़ा बहुत जो है वो ऐब होगा, ठीक है, लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास गया ना, तो फिर क्या हुआ कि तेरे दिल में तो बहुत काम रफूका निकला, ठीक है। जब तू दर्जी के पास गया ना अपने दिल को लेकर के, तो दर्जी ने जो है ना पत बताया कि तेरे दिल के अंदर तो जगह जगह सुराख हुए हैं, जगह जगह तेरे दिल के अंदर ऐब मौजूद है, तो इसके अंदर तो बहुत काम है अभी रफूका, ठीक है। तो ये खुद बैठ करके समझ में नहीं आता, ये किसी के पास जाना पड़ता है तब बात समझ में आती है। तो ये पूरा का पूरा इसका लुबिलुबाब, अगर ये सही ना हो तो फिर जाहिर है फिर पेनू मुरीदी वगैरह फिर वही बनेगा जो कि आजकल बना हुआ है। तो फरमाते हैं कि अगर किसी शेख से इस्लाही ताल्लुक रखने का इरादा हो तो पहले दर्जे ज़ेल बातों का इत्मीनान कर लें, जिसमें ये बातें ना हो उससे ताल्लुक कायम ना करें, ठीक है। तो ये जो बातें हैं ये तो अभी हम पढ़ते हैं, लेकिन इनको पढ़ने से पहले हम जरा अपने रोजमर्रा जिंदगी के मामूलात पर अगर नजर डालें ना, तो ये जो बातें हज़रत फरमा रहे हैं ना यहाँ पर, ये कोई नई बातें नहीं है हमारे लिए, ठीक है, ये कोई अनोखी चीजें नहीं कह रहे, क्योंकि यही काम हम करते हैं, यही काम हम करते हैं अपनी जिस्मानी इस्लाह के लिए, ठीक है। जब हम बीमार पड़ते हैं ना, या हमारा कोई बच्चा बीमार पड़ता है, तो हम ऐसे ही किसी डॉक्टर के पास नहीं चले जाते, ठीक है, कि कहीं पर डॉक्टर का बोर्ड लगा हुआ है, स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर या इंडिया जैसे मुल्क के अंदर, हम ऐसे नहीं उठ करके चले जाते, बल्कि हम चेक करते हैं, ठीक है, हमारे पास स्टैंडर्ड्स होते हैं कि हमने उसको चेक करना है कि जी ये कैसा डॉक्टर है, कि क्या इस काबिल है कि मैं खुद जाऊँ अपनी अपने जिस्मानी सेहत के लिए इसके पास, अपने बच्चों की सेहत के लिए इसके पास जाऊँ या ना जाऊँ। तो हम जो है ना अपने जिस्मानी मामलात के अंदर सारे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, बस यहाँ पर उसी चीज़ को रूहानी तरीके पर अप्लाई किया गया, ठीक है। नंबर वन, पीर दीन के जरूरी मसाइल जानता हो, शरीयत से ना वाकिफ ना हो, ठीक, किसी ऐसे डॉक्टर के पास हम नहीं जानते जो कि बेसिक्स यानी प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ के बारे में वाकिफ ना हो, बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में, राइट। तो इसी तरीके से पीर का भी यही मामला है कि वो शरीयत से ना वाकिफ ना हो, ऐसा ना हो कि जाहिल जो है वो पीर बन करके बैठ गया है, अब उसको शरीयत ही नहीं पता तो वो आपको क्या गाइड करेगा शरीयत में, ठीक है। नंबर दो, इसके अकायद कुरान और सुन्नत के मुताबिक हों, ٹھیک ہے. عقائد سب سے اہم چیز ہوتی ہے. ظاہر ہے مسلمان تو وہ ہے, ایمان تو اس کا ہے, جبھی تو آپ اس کے پاس جا رہے ہیں. امید ہے کہ کسی کافر کے پاس, کسی ہندو اور عیسائی کے پاس اپنی اصلاح کروانے کے لیے ایک مسلمان نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, تو ایمان تو ہے, لیکن ایمان کے بعد جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کہ کیا اس کا عقیدہ اللہ کے بارے میں کہیں کچھ غلط تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے قرآن کے بارے میں. یہ ساری عقائد ہم پڑھ چکے ہیں نا, اسی تفصیل بہشتی دیوری کے شروع کے اندر ہم یہ ساری تفصیلات پڑھ چکے ہیں. قرآن کے بارے میں صحیح عقیدہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحیح عقیدہ, آخرت کے بارے میں عقیدہ, یہ تو ہم نے ابھی اسی سیشن میں پڑھا ہے نا, آخرت کے بارے میں عقیدہ, ٹھیک ہے, فرشتوں کے بارے میں صحیح عقیدہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قرآن سنت کے مطابق ہوں, ٹھیک ہے, جن کا ذکر اس کتاب کے شروع میں کتاب العقائد میں آ چکا ہے. نیز شریعت کے احکام اور اصلاح باطن کے جو طریقے اس کتاب میں مذکور ہوئے ہیں, کوئی بات اس میں ان کے خلاف نہ ہو, ٹھیک ہے. تو جو انہوں نے باتیں لکھی ہیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ میری کتاب جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ہونی چاہیے ہمارے لیے, ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی کتاب کو اسٹینڈرڈ نہیں بنایا, بلکہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میری کتاب کے اندر جو میں نے چیزیں لکھی ہیں نا, یہ قرآن و سنت کی روشنی میں میں نے آسان اردو زبان میں لکھ دی, ٹھیک ہے. تو آپ اگر قرآن و سنت کے علم رکھنے والے عالم نہیں ہیں, آپ کی اتنی تفسیری یا گہری نظر نہیں ہے قرآن و سنت کے اوپر, تو آپ اس کتاب میں جو میں نے آسان الفاظ میں آپ کی لینگویج میں لکھ دیا ہے, انہی کے اوپر غور کر کے دیکھ لیں کہ وہ بندہ ان اس معیار پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا. پیری مریدی محض پیشے کے لیے نہ کرتا ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ اس معاملے کے اندر ڈاکٹری پیشے سے مختلف ہے, کیونکہ ڈاکٹری پہ جو یعنی جسمانی ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ عمومی طور پر, یہ بھی ہر ڈاکٹر ایسا نہیں ہوتا, لیکن عمومی طور پر وہ جو ہے نا یہ اپنی روزی کمانے کے لیے کرتے ہیں یہ کام, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو اس کے ذریعے سے ہی پیٹ پالنا ہوتا ہے. لیکن ہم ایسے بھی ڈاکٹرز کو جانتے ہیں جو کہ پروفیشنلی کچھ اور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ پارٹ ٹائم کے اندر فار ایگزامپل وہ کوئی ڈاکٹری کو کورس کرے, اور یوزلی وہ ایلوپیتھک ڈاکٹر نہیں ہوتے بلکہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ایسے ملتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ ہیں تو کچھ اور پروفیشنلی, لیکن انہوں نے ہومیوپیتھی کا کام کیا ہوا ہے کیونکہ وہ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک کمبینیشن ہے کہ پارٹ ٹائم جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں, پروفیشنلی ان کا کوئی اور کام ہو, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو روحانی سلسلہ ہے, روحانی اصلاح کا سلسلہ, تو اس کے اندر اگر پیسے انوالو ہو جاتے ہیں نا کہ جی اسی نیت سے کرتا ہے, ٹھیک ہے, اسی نیت سے کرتا ہے کہ جی میں کروں گا تو لوگ میرے معتقد بنیں گے اور مجھے آ کے پیسے دیں گے اور اس طرح سے میری دال روٹی چلے گی, ٹھیک ہے, تو یہ نیت اس راستے کے اوپر یعنی زہر قاتل ہے, ٹھیک ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ مال کے اوپر رال نہ ٹپکے, اگر مال کے اوپر کسی شیخ کی رال ٹپکنی شروع ہو گئی نا, یہ اسی نیت سے یہ کام کر رہا ہے دینی اصلاح کا, تو پھر اس کی نسبت گئی, ٹھیک ہے, اس کے پاس پھر نسبت نہیں رہ سکتی, یعنی جو نسبت اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے, جس کی وجہ سے اس کو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ اپوائنٹمنٹ کہاں سے ہوتی ہے, جیسے فزیکل ڈاکٹر ہوتے ہیں تو ان کی اپوائنٹمنٹ کہاں سے ہوتی ہے, ہیلتھ منسٹری سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ سے ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہاں پر اپوائنٹمنٹ کہاں سے ہوتی ہے, یہاں پر اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کا کام ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی یہ اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں. البتہ وسیلے کے طور پر بزرگوں کو استعمال کر لیتے ہیں کہ بزرگوں کے دل میں بانٹ ڈالتے ہیں کہ جی اس بندے کو آپ حکم کریں کہ یہ دین کا کام کرنا شروع کر دے, تو بزرگ تو ویسے ہی جو ہے وہ وسیلے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اصل اپوائنٹمنٹ کہاں سے ہو رہی ہوتی ہے, اصل اپوائنٹمنٹ جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو معاملہ ہے نا وہ اخلاص کا انتہائی ضروری, بلکہ یعنی یہاں پر تو اخلاص کے بغیر پھر معاملہ ہی الٹا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. ڈاکٹر کا بے شک اخلاص نہ ہو, وہ آپ کی جسمانی بھلائی کے لیے کام نہ کر رہا ہو, اس نے بس پروفیشنلی جو ہے وہ اپنا ٹائم پورا کرنا ہے اور اس نے پیسے کمانا ہے, ٹھیک ہے, اس میں جو اس نے پڑھا ہوتا ہے تو اس چیز کو وہ ٹھیک ٹھیک جو ہے وہ آپ کے اوپر اپلائی کر دیتا ہے تو اس کا کام چلتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن نیت اس کی کیا ہوتی ہے, پیسے کمانا ہوتا ہے, پیٹ پالنا ہوتا ہے اپنے اور اپنے بچوں کا, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر یہ نیت قابل قبول نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نسبت ہوتی ہے نا, جس نسبت کی وجہ سے, جس کنیکشن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ کیا ہوتا ہے کسی بندے کو اس کام کے لیے, تو اگر اس کی مال کے اوپر رال ٹپکنی شروع ہو گئی تو یہ نسبت اللہ تعالیٰ سلب کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو واپس لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی کو فرمایا کہ نسبت اس کی ختم ہو جاتی ہے. ایک منٹ ذرا ان کی, ٹھیک ہے. نمبر چار, کسی ایسے بزرگ کا خلیفہ مجاز ہو جس کو دیندار لوگ بزرگ سمجھتے ہوں, ٹھیک ہے. اب یہ خلیفہ اور مجاز یہ کیا الفاظ ہیں, تو خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نائب,
ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव या सबॉर्डिनेट, ठीक है, नायब इसको कहते हैं। तो जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के खलीफा इस दुनिया के अंदर, ठीक है ना, अल्लाह ताला के का नायब कौन होता है दुनिया में, अल्लाह के रसूल होते हैं, फिर रसूलों के खलीफा होते हैं, ठीक है, यानी रसूल को जो जब इस दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं तो फिर रसूलों के भी खुलफा होते हैं। तो रसूल के खुलफा कौन थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला, ठीक है, और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह के बाद जो दूसरे खुलफा आए जिनको खुलफा राशिदीन कहा गया, तो वो भी नायब थे नबी अलैहिस्सलाम के, ठीक है। तो खलीफा का मतलब होता है नायब, ठीक है, यानी जब असल मौजूद ना हो तो उसके काम को करने के लिए जो नायब मुकर्रर किया जाता है ना वो खलीफा कहलाता है, ठीक है। तो असल मौजूद ना हो से क्या मुराद कि भाई जब अल्लाह ताला जो है वो फिजिकली यहाँ पर मौजूद तो नहीं है ना, ठीक है, तो यानी अल्लाह ताला हमारा अहले सुन्नत वाला जमात का अकीदा क्या है कि अल्लाह ताला जो है वो अपने इल्म के साथ तो हर चीज पर मुहीत है लेकिन अल्लाह ताला की जात मौजूद नहीं है इस दुनिया के अंदर, ठीक है, अल्लाह ताला की जात मौजूद नहीं है। तो अल्लाह ताला की जात मौजूद नहीं है तो फिर अल्लाह ताला के खलीफा को इस दुनिया में भेजा गया जो कि रसूल होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जब रसूल की जात जमीन के ऊपर से मुंतकिल होकर के जमीन के नीचे चली जाती है, ठीक है, यानी जिसको कहते हैं कि पर्दा फरमा गए, ठीक है, दुनिया से चले गए, तो नबी अलैहिस्सलाम की जात तो रोज़ा अक़दस में मौजूद है। जब भी तुम जाके वहां पे जाकर के सलातुस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह आपके ऊपर ऐसा रसूलुल्लाह सलातुस्सलाम, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं इस दुनिया के अंदर लेकिन जमीन के नीचे मौजूद है, ठीक है, और जमीन के मामला तय करने के लिए जमीन के ऊपर होना जरूरी होता है, ठीक है। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर से नीचे चले गए तो उसके बाद किसी खलीफा की जरूरत पड़ी, यानी असल जब नहीं होती तब खलीफा की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसी तरीके से ना ये जो इस्लाह का सिलसिला होता है तो इसके अंदर भी बुजुर्ग जो है वो अपने खलीफा मुकर्रर करते हैं, क्योंकि बुजुर्ग जो होते हैं यानी यानी जो बड़े शेख हैं फॉर एग्जांपल, बड़े शेख जो है वो हर वक्त मौजूद नहीं हो सकते हर जगह पर, ठीक है। तो जब वो किसी जगह पर मौजूद नहीं होते लेकिन उनके मुतअल्लिकीन तो उस जगह पर होते हैं ना, तो अब मुतअल्लिकीन की इस्लाह के लिए फिर वो किसी को अपना नायब मुकर्रर करते हैं उस जगह कि जी ये इस इलाके में ये मेरे नायब हैं, ठीक है, तो इनके साथ आप अपना इस्लाही ताल्लुक रखें और ये फिर आपको मशवरा देंगे, अगर इनको मजीद गाइडेंस की जरूरत होगी तो ये मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है, मुझसे मशवरा कर लेंगे। तो इस तरीके से ना ये खुलफा का एक सिस्टम चलता है। अब जब बुजुर्ग इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर वही खलीफा जो होते हैं वही गोया कि उनका मुकाम उनकी जगह ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मतलब होता है खलीफा का। आप पूछ रहे हैं व्हाट इज मेंट बाय अजल खलीफा। अजल खलीफा जो है ना ये सिर्फ एक टर्म है जो कि किसी ऐसे खलीफा के लिए कही जाती है जो कि सबसे सीनियर हो, ठीक है, यानी उस बुजुर्ग के जो सबसे सीनियर खलीफा या वन ऑफ द सीनियर खलीफा, ठीक है, तो उनको अजल खलीफा कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा अजल के लिए एक से ज्यादा शख्सियात का गालिबन नाम आता है, हजरत किसी को नाम याद है थानवी रहमतुल्लाह अलैह के अजल खलीफा जो है अभी ज़हन में नहीं आ रहे, लेकिन तो सीनियर खलीफा को अजल खलीफा कहा जाता है। हर खलीफा जो है ना वो अजल खलीफा नहीं कहलाता है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब जो है वो इतना ही होता है। मौलाना अब्दुल हई रहमतुल्लाह खलीफा अजल शायद नहीं कहलाते हैं, हाँ हजरत मसीहुल्लाह खान रहमतुल्लाह ये खलीफा है अजल, ठीक है, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के थे, ठीक है। इसी तरह चंद और भी मेरे ख्याल में अजल खलीफा कहलाते हैं। एनीवे दूसरा सवाल क्या है कि मौलाना हमने सुना कि मशाइख भी कभी अपने किसी खलीफा से निस्बत सल्ब कर लेते हैं। हाँ ऐसा बिल्कुल होता है कि अगर उन्होंने किसी को खिलाफत दी है लेकिन अब खिलाफत मिलने के बाद वो जो साहब हैं उन्होंने तकाजे पूरे नहीं किए, ठीक है, कुछ गलत काम करना शुरू कर दिया या जैसा उनको कहा गया था करने के लिए वैसे नहीं किया, तो फिर मशाइख जो होते हैं ना वो अब ये जो इजाजत खिलाफत उन्होंने दी होती है ना इसको वापस ले लेते हैं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ ये बाकायदा होता था, बल्कि हर महीने उनके यहाँ लिस्ट लगती थी उनके खानकाह के अंदर कि जी इस महीने में ना इन इन हजरात से खिलाफत वापस ले ली गई है, ठीक है। तो अगर जरूरत हो थानवी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट मामला था, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मामला था, ठीक है, तो वो जरा से इधर उधर हो जाता था ना कोई वो फौरन खिलाफत वापस ले लेते थे, ठीक है। आजकल के दौर के अंदर जो मशाइख होते हैं वो इतना स्ट्रिक्ट मामला नहीं रखते हैं क्योंकि बहुत मामला यानी बहुत बुरे दौर से इस वक्त हम गुजर रहे हैं और इस वक्त जो है ना वो यानी इतना ज्यादा गलबा हो चुका है गुनाह का, कुफ्र शिर्क का, कि
इतना स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड अगर रखेंगे तो फिर कोई भी नहीं बचेगा, लिटरली कोई भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद रखते हुए जो है वो बहुत अफुदर वाला मामला करते हैं। और ये दूसरी तफसील है कि भाई क्या मतलब, किस हद तक कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, किस हद तक कॉम्प्रोमाइज यानी किस हद से आगे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, ये तो खिलाफत आपको बता दिया, खलीफा। मजाज का क्या मतलब होता है? मजाज का जो है, जो लफ्ज है, ये भी यानी सर्फ थोड़ी बहुत आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो इसको भी सुन लीजिए। जाजा या जूजू इजाजतन फहुआ मजाजुन, या अजाजा या जूजू इजाजतन फहुआ मजाजुन। ठीक है, ये भी बाब इफाल से ही यानी वर्ब फॉर्म फोर जो बनती है अकरम युकरमु इकरामन, उसी से ये भी इसम फाइल का बल्कि इसम मफूल का सीगा है। ठीक है, इसम मफूल का यानी ऑब्जेक्ट का सीगा है। इसका मतलब क्या होता है? वो शख्स जिसको इजाजत दी गई है। ठीक है, किस चीज की इजाजत दी गई है? परमिशन। किस चीज की परमिशन दी गई है? तो परमिशन दी जाती है कि जी अब आपको हम परमिशन दे रहे हैं कि आप लोगों को अल्लाह का जिक्र सिखला सकते हैं। ठीक है, बाकायदा एज अ गाइड, एज अ टीचर आप लोगों को अल्लाह का जिक्र सिखला सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू कि आप लोगों को बाकायदा लोगों को महफिल जिक्र बाकायदा यानी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला के जिक्र की महफिल, क्योंकि अल्लाह का जिक्र जो है वो इनफरादी तौर पर भी किया जाता है और इज्तिमाई शक्ल में भी अल्लाह का जिक्र। ठीक है, जैसे बुखारी और मुस्लिम की रिवायात मौजूद है कि जब लोग एक जगह बैठ करके अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं इज्तिमाई शक्ल में, तो फरिश्ते जो है उनके ऊपर नाजिल होते हैं, फिर फरिश्ते आसमान पर जाते हैं, फिर अल्लाह ताला लोगों उन फरिश्तों से पूछते हैं कि जी तुम क्या कहाँ से आ रहे हो, हालांकि अल्लाह ताला को सब कुछ पता है, फिर फरिश्ते अल्लाह ताला को जवाब देते हैं कि जी हम ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ लोग बैठे आपका जिक्र कर रहे थे। ठीक है, तो मजालिस जिक्र होती है, तो मजालिस को आप कर सकते हैं इस तरह के मजालिस। ठीक है, नंबर टू ये हो गया। नंबर थ्री ये कि जैसे कि जो असल बुजुर्ग होते हैं वो लोगों से यानी ये इस्लाही ताल्लुक की बैत लेते हैं या इस्लाही ताल्लुक लोग उनके साथ जोड़ते हैं ना, तो इसी तरीके से इन खलीफा साहब को भी इजाजत दी गई है कि वो भी यानी लोगों के पीर बन सके, लोगों के शेख बन सके, यानी लोग उनके साथ भी इस्लाही ताल्लुक बना सके। ठीक है, तो ये मजाज के मानी होते हैं। ठीक है, यानी जिक्र करवा सकें, मजालिस जिक्र की जो है वो बाकायदा ऑर्गेनाइज कर सकें। और ये कि एक मिनट, सॉरी जरा मेहमान आए हुए, तो आप लोगों को बाप बहुत करा रहा। तो ये हो गई मजाज की थोड़ी सी तारीफ। तो यानी जो बुजुर्ग जिनसे इनको इजाजत खिलाफत है ना, वो बुजुर्ग भी लोगों में नेक मशहूर हों और दीनदार लोग उनको बुजुर्ग समझते हों। ठीक है, और दीनदार लोगों से में मुराद जो है वो अगर उलमा हों तो और भी ज्यादा अच्छी बात होती है कि उलमा उनको दीनदार समझते हैं। ठीक है, या आम यानी उलमा उनको बुजुर्ग समझते हैं तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, वरना ये कि जो उमूमी तौर पर दीनदार लोग मुआशरे में समझे जाते हैं वो उनको बुजुर्ग समझते हों। यानी इजाजत और खिलाफत जो है वो भी किसी ऐसे ही शख्स से ना हो बल्कि वेल नोन बुजुर्ग से हो कि जिसके मामला लोगों को पता हो। ठीक है, नंबर पांच के इस पीर को भी नेक लोग अच्छा कहते हों। ठीक है, ऐसा ना हो कि जी जो बदअकीदा लोग हैं वो तो उनको अच्छा कहते हों और इनके साथ खूब जो है वो ताल्लुक बना हुआ हो जाहिलों का और बदअकीदा लोगों का, लेकिन जो नेक लोग हों वो इनको अच्छा ना समझते हो। ठीक है, तो ऐसा भी मामला ना हो, तो ये भी एक चेक करने का क्राइटेरिया है। ठीक है, नंबर छः, इसकी तालीम में ये असर हो कि दीन की मोहब्बत और शौक पैदा हो जाए, ये बात उसके मुरीदों का हाल देखने से मालूम हो जाएगी। जैसे कि वो मुहावरा मशहूर है कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। ठीक है, उसी तरह उस्ताद अपने शागिर्दों से पहचाना जाता है,
उसी तरह पीर जो है वो अपने मुरीदों से पहचाना जाता है। अगर उसके शागिर्द और उसके मुरीद जो हैं वो नेकी के रास्ते के ऊपर चल पड़े हों, जाहिरी तौर पर शरीयत और सुन्नत की पाबंदी शुरू कर दी हो, बातिन का हाल तो अल्लाह ताला जानता है, वो तो आप नहीं चेक कर सकते हैं ना कि किसी के बातिन में क्या मामला चल रहा है, लेकिन जाहिरी तौर पर तो हमें मुकल्लफ बनाया गया ना चेक करने का। तो मुरीदों का हाल देखने से अंदाजा हो जाता है। आगे इन्होंने और भी तफसील लिखी कि अगर 10 मुरीदों में 5-6 मुरीद भी अच्छे होना तो समझ लो कि तासीर वाला है, यानी इसकी बात में तासीर है कि दीन की मोहब्बत पैदा होगी, ठीक है। और अगर एक आध मुरीद के बुरे होने से शुबा मत करो, ठीक है। यानी 5 में 10 में से 5 का क्राइटेरिया बताया, यानी कि कम अज कम निस्फ या निस्फ से ज्यादा लोग अच्छे हों, ठीक है। बाकी अगर कोई बुरा हो और फिर भी उसका इनके साथ इस्लाही ताल्लुक बना हुआ हो, बैत का ताल्लुक हो, तो उससे तुम शुबा मत करो, ठीक है। ठीक है, तो इसकी इसको भी समझ लेना चाहिए कि भाई जो मुरीद होते हैं तो मुरीद जो है वो तो मरीज की मानिंद होते हैं ना, तो डॉक्टर के पास तो मरीज ही आता है, ठीक है। तो भाई कोई मरीज जो है वो अच्छा ज्यादा सेहतमंद हो गया, ठीक है, और कोई मरीज जो है वो अभी सेहतमंद नहीं हुआ, ठीक है। या तो ये कि उसको अभी वक्त कम लगा है, ठीक है, वक्त कम गुजरा है उसके इलाज में, या ये कि वो खुद ही जो है वो दवाई सही तरीके से नहीं ले रहा, ठीक है। तो दवाई सही तरह नहीं ले रहा तो फिर वो कैसे यानी सेहतमंद हो जाएगा, तो उसके अंदर डॉक्टर का तो कसूर नहीं होता ना। लेकिन हम डॉक्टर को जो अपने इलाज के लिए सेलेक्ट करते हैं तो हम चंद लोगों को तो देखते हैं ना कि जी उनको इनके पास जाकर के फायदा हुआ, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना वर्ड ऑफ माउथ से, लोग बताते हैं ना कि जी फलाने डॉक्टर से जो है वो मुझे बड़ा फायदा हुआ तो आप भी उनके पास जाएं, तो इस तरह से हम उनके पास चले जाते हैं, ठीक है। फिर उनके पास जाकर के हम देखते क्या है, हम फिर वर्ड ऑफ माउथ की बेसिस पे चले तो जाते हैं, लेकिन फिर हम सर्टिफिकेशन तो देखते हैं ना, कम से कम पढ़े लिखे लोग कि जी कहीं बोर्ड से सर्टिफाइड भी हैं कि नहीं है, कहीं जो है वो किसी मेडिकल कॉलेज से उन्होंने पढ़ा भी है कि नहीं है, कहीं क्वेक तो नहीं है कोई, ठीक है। तो ये जो सर्टिफिकेशन देखते हैं ना, तो इनकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि पीछे नंबर 4 में लिखी हुई थी, ठीक है। यानी सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के बेसिस पर हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, या सिर्फ जब 2-3 मरीजों को ये कहते हुए हमने सुन लिया कि जी उनको फायदा हुआ है, तो खाली इस बेसिस पर तो नहीं डॉक्टर के पास चले जाते ना, तो बोर्ड सर्टिफाइड भी होना जरूरी होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फरमाया कि और तुमने जो सुना होगा कि बुजुर्गों में तासीर होती है, वो तासीर यही है, यानी उनके जो स्टूडेंट्स है ना वो नेक बन गए, यही तासीर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तासीर का मतलब ये नहीं कि वो जो कुछ कह देते हैं इसी तरह हो जाता है, यानी नाउज बिल्ला उनके पास कोई ऐसी मैजिकल ताकतें आ गई हैं या ऐसा उनके पास जो है वो कुदरत आ गई है कि वो जैसा फरमाते हैं वैसे ही हो जाता है, ठीक है। ये तासीर की नहीं है, ठीक है। कितने हमारे बुजुर्गों ने बात को बिल्कुल क्लियर किया, ठीक है, कि कोई इस तरह से ना समझे कि जी ये पीर साहब जो है ये तो जैसे कह देते हैं वैसा हो जाता है, तो इस वजह से इनकी बात में बड़ी तासीर है, ठीक है। इसलिए आम लोग तो यही इसी तरह से लोगों को जज करते हैं। अच्छा, उनके एक फूंक मारने से बीमारी दूर हो जाती है, ये भी तासीर नहीं है, हालांकि एक आम आदमी के लिए, जाहिल के लिए तो ये बहुत बड़ी तासीर है कि जी फूंक मारा है बीमारी दूर होगी, वाह वाह क्या बात है जी इन पीर साहब की, ठीक है। या जिस काम के लिए तावीज देते हैं वो काम मर्जी के मुताबिक हो जाता है, ठीक है। क्या मतलब, क्या मेरी मर्जी पूरी हो जाए, पीर साहब से तावीज लेकर के आ जाओ ताकि मुझे जहां जॉब चाहिए वहां जॉब मिल जाए, जहां मेरी बेटी की शादी मैं चाहता हूं होनी है वहां बेटी की शादी हो जाए, ठीक है। बल्कि लोग तो इसके इस काम के लिए भी आज तावीज लेते हैं कि जिस लड़की से मुझे इश्क हो गया उस लड़की से मेरी शादी हो जाए, तो पीर साहब तावीज दे रहे हैं, ठीक है। और ऐसे पीर भी आपको मिल जाएंगे जो कि इस काम के लिए भी तावीज देते हैं, यानी हराम के लिए, ठीक है। जो हराम करता फिर रहे तो उस हराम में मजीद मदद करने के लिए तावीज, अनलेस के मामला दूसरा हो कि जी बस पर्दे के साथ जो है वो प्रपोजल भेजा है और अब शादी हो जाए उस जगह पर, तो कम से कम हराम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बहरहाल नियत तो इसके अंदर दुनिया तरबी वाली होगी ना, और पीर साहब के पास दुनिया तरबी के लिए जाना जो है ये बुरी नियत होती है, ठीक है। तो खैर, ये तासीर नहीं है कि उनके तावीज पहनने से या तावीज लटकाने से जो है वो काम हो जाता है, ठीक है। या ऐसी तवज्जो डालते हैं, तवज्जो डालना होता क्या है पहली बात, ठीक है, तो तवज्जो डालते हैं कि आदमी पर वज्द तारीफ हो जाता है, यानी हाल चढ़ जाता है जिसको कहते हैं जी, और नाचना शुरू हो जाते हैं या अल्लाह अल्लाह या जो भी इस किस्म के काम करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो वज्द जो है ना वो इस कैफियत के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो तवज्जो डालना, ये तवज्जो डालना क्या होता है, ये इसको आप आसान जुबान के अंदर क्या कह सकते हैं,
नफ्स तो खैर हम काफी इस्तेमाल करते हैं इसको, कुव्वत इरादी का लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, फोकस, ठीक है, फोकस या कुव्वत इरादी के साथ फोकस करना, ठीक है। तो ये फोकस जो है ना, अल्लाह ताला ने इंसान को ये पावर दी है, ठीक है, कि जो अपने फोकस को किसी नुक्ते के ऊपर मरकूज करना सीख ले मशकों के जरिए से, मशकों के जरिए, ठीक है, यानी मशक कर करके, मेहनत कर करके ना उसको अपने अपने तवज्जो को, अपने फोकस को, ठीक है, अंग्रेजी में फोकस कहते हैं, उर्दू में तवज्जो कहते हैं, उसको किसी एक नुक्ते के ऊपर मरकूज करना, ठीक है, सीख ले, तो फिर ऐसे शख्स की तवज्जो में ऐसी तासीर आ जाती है कि इससे जो है ना वो चीजें हो जाती हैं, ठीक है, अगला अगली चीज के ऊपर असर हो जाता है, हत्ता कि अगले बंदे के ऊपर असर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज क्या कहलाती है, ये तवज्जो डालना कहलाती है, और ये मशायख के टर्मिनोलॉजीज के अंदर एक टर्मिनोलॉजी भी है, ठीक है। तो ये तवज्जो जो है, ये तवज्जो किसी को भी हासिल हो सकती है, ठीक है, ये बात भी क्लियर करने अपने ध्यान में कि ये किसी हिंदू को भी हासिल हो सकती है, ठीक है, किसी, ये जो जोगी लोग होते हैं ना, ये पता नहीं कौन कौन से इनके यहाँ मशकें होती हैं, ठीक है, तो इन मशकों के जरिए से जो है ना ये अपने तवज्जो को फोकस करना सीखते हैं, सालों मशकें करते हैं, और इसके बाद उनको ऐसी तवज्जो मिल जाती है कि ये किसी बंदे के ऊपर अगर ये फोकस करते हैं ना, तो उस बंदे के ऊपर कुछ कैफियात आनी शुरू हो जाती है, वजदारी हो जाए या और किसी पॉजिटिव या नेगेटिव किस्म की कैफियात आ जाए, हत्ता कि ये फोकस जो है वो आप किसी मटेरियल चीज के ऊपर डालें ना, तो मटेरियल चीज के अंदर भी तब्दीली आ जाती है, ठीक है। ये पावर अल्लाह ताला ने इंसान को दी है, जो उस पर मेहनत करता है उसको ये चीज मिल जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसको खैर के लिए इस्तेमाल किया जाए, इसी फोकस, पावर ऑफ फोकस को शर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। जाहिर है जो बंदा होगा जिसने कि ये मेहनतें करी हैं, अगर वो शर पसंद होगा तो वो अपनी इस तवज्जो को शर के लिए इस्तेमाल करेगा, ठीक है, और अगर वो बंदा खैर पसंद होगा लेकिन फिर भी उसने इस काम के लिए मेहनतें करी हैं, तो वो इसको खैर के लिए इस्तेमाल करेगा, ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है, ठीक है। तो हमारे मशायख जो है वो इस चीज को भी करते हैं, और यानी जो भी कर पाते हैं वो करते हैं, और ये फिर दलाइल के साथ मौजूद भी है कि ये, यानी इसके बाकायदा हदीसों से इसकी इसकी दलाइल भी मिलते हैं, ठीक है। तो किताबों के अंदर मशायख ने, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने भी इसके बारे में लिखा है और दूसरे मशायख ने भी लिखा है। बहरहाल ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, यानी जब शेख सेलेक्ट किया जाता है ना, तो शेख सेलेक्ट करने में ये तवज्जो वाली वाले फैक्टर को नहीं देखना चाहिए, ठीक है, तवज्जो वाले फैक्टर को नहीं देखना चाहिए। अगर उनके पास तवज्जो वाली कैटेगरी सलाहियत है तो ठीक है, अच्छी बात है, वो इंशाल्लाह उसको खैर के लिए इस्तेमाल करते होंगे, फायदा होता होगा, लेकिन ये हमारे सिलेक्शन क्राइटेरिया में शामिल नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ये गलत क्राइटेरिया है, ओके। तो फरमाया कि इन तासीरों से कभी धोखा नहीं खाना चाहिए, सही है। तो यानी इसका ताल्लुक मशकों के साथ है, रियाजतों के साथ है, इसका ताल्लुक शरीयत और सुन्नत के साथ नहीं है, तवज्जो वाली चीज का ताल्लुक, ठीक है। तो इस वजह से उसको क्राइटेरिया नहीं बनाना चाहिए, कि क्राइटेरिया तो शरीयत है ना, सुन्नत है और दीन है क्राइटेरिया। नंबर 7, इस पीर में ये बात हो कि दीन की नसीहत करने में मुरीदों का लिहाज ना करता हो, हर खिलाफ शरा और नामुनासिब काम से रोक देता हो, ठीक है, तो मुरीदों का लिहाज ना करता हो। तो लिहाज करने का मतलब क्या है, कि यहाँ पर ये मुराद नहीं है कि इसको कहें कि जी जैसी कोई चीज देखी वैसी जो है वो खड़े खड़े लोगों के सामने उनको जलील कर दिया, ठीक है, या बहुत बुरी तरीके से उनको रोक दिया, टोक दिया, और ये मुराद नहीं है इनके यहाँ पर, ठीक है, बल्कि मुराद क्या है कि ये ना देखता हो कि अच्छा ये तो बड़े अमीर साहब हैं, तो मैं अगर इनका इनकी इस्लाह ना, तो ये हदिये देने बंद कर देंगे, ठीक है, तो इस वजह से उनका लिहाज कर रहे हैं, और जो गरीब साहब हैं तो गरीब साहब का लिहाज नहीं करे, क्योंकि गरीब साहब से हदिये की कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है, ये मुराद है यहाँ पर, ठीक है। या गरीब ना, यानी अमीर ना हो, चलो कम से कम, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आर्मी वाले साहब आ गए, पाकिस्तान में आर्मी वालों के आपको पता है कितनी इज्जत होती है, आर्मी वाले के साथ ताल्लुक तो बड़े काम निकल आते हैं, राइट। तो ये जो आर्मी के कर्नल साहब हैं, ये कर्नल साहब का बड़ा लिहाज कर रहे हैं, क्योंकि कर्नल साहब से काम बनते हैं, राइट, और जो दूसरे साहब हैं वो जो है वो उनसे काम नहीं बनते, तो जी उनका कोई लिहाज नहीं कर रहे, ये मामला नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक को जो है वो बेदर्दी के साथ जो है वो धड़कना शुरू हो गए, उनकी इसलाह करना है कि जी चूंकि मैं तो इसलाह करने के लिए, चूंकि इन्होंने ताल्लुक बनाया, अब तो मैं तो आओ देखा ना ताओ हर हाल में इनकी इसलाह करूंगा, क्योंकि ऐसा करने से जो है ना वो, एक तो ये कि इंसान जो आते हैं वो बेशक अपनी इस्लाह की नियत से आए भी सही, लेकिन नफ्स को कमजोर करने में उनका भी वक्त लगता है। अभी जो शुरू शुरू में आए होते हैं ना, तो उनका नफ्स बड़ा ताकतवर होता है, वो रोक टोक जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, जब अगर आप करेंगे ना तो फिर वो चले जाएंगे, और चले जाने से शेख साहब को नुकसान नहीं होगा। ये भी नहीं समझना चाहिए कि वो चले गए तो शेख साहब का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मुरीद कम हो जाएंगे। नहीं, बल्कि नेक नियत शेख जो होता है वो इस नुकसान को नहीं देखता, वो उस नुकसान को देखता है जो कि उस शख्स को होगा अगर वो चला गया। ठीक है, क्योंकि जब वो चला जाएगा ना तो फिर बहुत कम चांस है कि वो किसी दूसरे शेख के पास जाएगा, बल्कि वो जाएगा ना तो वो किस शैतान शेख के पास जाएगा। ठीक है, वो भी तो एक शेख सा मौजूद है ना जो कि मुस्तकिल लगे हुए हैं। ठीक है, और आज के दौर के अंदर जो है ना, खुसूसन जो अल्लाह वाले होते हैं, नेक लोग होते हैं, तो उनके पास आने के लिए जो लोग होते हैं ना, उनको बहुत अपने खिलाफ मुताहिना करना होता है। ठीक है, अपनी इस्लाह के लिए किसी के पास चला जाना आसान काम नहीं होता आज के दौर में खुसूसन। ठीक है, तो अगर वो आपके पास आया है ना अपनी इस्लाह के लिए, तो बहुत यानी जतन करके आया है। ये अज्यूम ना करें कि उसके पास बहुत सारे ऑप्शन थे और वो उन ऑप्शन में से जो है ना वो आपके पास आए, बल्कि यू आर probably his last hope. ठीक है, इस तरह से मशायख आज के दौर में सोचते हैं कि भाई आज इतना मुश्किल है किसी के लिए इस्लाह के लिए आना। पहली बात तो ये कि मशायख ही कम मौजूद हैं। ठीक है, पता नहीं लाखों लोगों के ऊपर शायद चंद मशायख मौजूद हों दुनिया के अंदर, ठीक है, या करोड़ों के ऊपर जो है वो चंद सौ मशायख मौजूद हों, तो वैसे ही मशायख मौजूद हैं। तो मशायख तलाश करना भी कोई आसान काम नहीं है। फिर उसके बाद अपने ऊपर काबू पाना कि किसी के पास जाकर के वाकई इस्लाह के लिए अपने आप को पेश करना, ये तो जान जोखों का काम है आज के दौर में। ठीक है, अब इतना जतन करके वो आपके पास आया और आपने उनको पहले दिन जो है वो इस तरीके से डांट दिया कि वो बर्दाश्त ना कर सका, वो चला गया, तो अब तो वो नहीं वापस आ सकता ना, अब तो वो गया, और वो गया किधर, शैतान के पास गया। ठीक है, तो इस वजह से ना फिर लिहाज जो है वो इस नियत से करना जो है ये 100% जायज लिहाज है। ठीक है, अगर फरमाते हैं कि जब कोई ऐसा पीर मिल जाए तो अच्छी नीयत से यानी खालिस इस्लाह बातिन की नीयत से ताल्लुक कायम करना चाहिए, खालिस इस्लाह बातिन की नीयत से। ठीक है, अगर मस्कूरा बाला औसाफ का हामिल कोई शेख मुयस्सर ना हो तो मुरीद बनना फर्ज तो है नहीं। ठीक है भाई, नमाज पढ़ना फर्ज है भाई, रोजा रखना फर्ज है, जकात देना फर्ज है, हज करना फर्ज है, और गुनाहों को छोड़ना फर्ज है। ठीक है, तो ये फराइज है। पीर का के साथ बैत का ताल्लुक बनाना, बाकायदा जिसको फॉर्मल ताल्लुक बनाना है, ये तो फर्ज नहीं है ना, ये तो सबब है फर्ज की तरफ पहुंचने के लिए। ठीक है, तो चूंकि हम बगैर सबब के फर्ज तक नहीं पहुंचते, इस वजह से सबब को इख्तियार किया जाता है, वरना सबब फर्ज नहीं होता। ठीक है, तो ये सबब जो है ना वो फर्ज नहीं है, अलबत्ता दीन की राह पर चलना फर्ज है। ओके, तो मुरीद हुए बगैर भी इस राह पर चलते रहो। और आगे हजरत ने महजूफ इबारत जो है वो यहां नहीं लिखी, लेकिन हम अकल इस्तेमाल करें तो महजूफ इबारत समझ में आ जाती है, अगर चल सकते हो तो। ठीक है, अगर चल सकते हो तो कोई जरूरत नहीं है, यानी अगर तुम अपना इलाज खुद कर सकते हो, ठीक है, सही मानों में, आज तो हर कोई समझता है कि वो कर सकता है, लेकिन सही मानों में अगर तुम अपना इलाज कर सकते हो तो भाई डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम खुद इलाज करो। ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर सकते ना तो फिर ये मत कहना कि जी मेरा इलाज ना हुआ तो इस वजह से मैं बीमार रहा, तो भाई आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए। ठीक है, तो उस वक्त क्या जवाब देंगे। तो खैर, कोई सवाल हो अगर टॉपिक के सिलसिले में तो आप पूछ लीजिएगा। मुर्शिद से ताल्लुक के आदाब, ठीक है, हर चीज की दुनिया में आदाब होते हैं, तो उसी तरीके से इस ताल्लुक के भी आदाब होते हैं, क्योंकि ये ताल्लुक जो है वो बहुत बड़ा ताल्लुक है, बड़े मकसद के लिए है। फरमाते हैं कि अपने शेख और मुर्शिद का खूब अदब करे, जिक्र व अज़कार के जो तरीके वो बताए उनकी पाबंदी करे। ठीक है, तो अपने शेख के बारे में ये एतकाद रखे कि इस्लाही ताल्लुक रखने में मुझे जितना फायदा इनसे पहुंच सकता है, इतना इस जमाने के किसी और बुजुर्ग से नहीं पहुंच सकता। ठीक है, अब ये जो बात है ये जरा मुश्किल से समझ में आती है। ठीक है कि भाई दुनिया में तो एक से एक बुजुर्ग मौजूद है, तो मेरे शेख जो है वो सब बुजुर्गों से अफजल को जाके हो गए कि अगर इनसे जितना फायदा पहुंच सकता है किसी और से नहीं पहुंच सकता, या ये कि बस यही क्यों है। ठीक है, तो ये इस किस्म की बात जो होती है वो आसानी से समझ में नहीं आती, तो इस वजह से मशायख है ना मिसालों के जरिए से इसको समझाते हैं कि देखें हर बच्चे की एक माँ होती है। ठीक है, हर बच्चे की माँ होती है, और दुनिया के अंदर जितनी औरतें हैं बच्चों वाली वो सारी माएँ हैं। ठीक है, और जाहिर है औरतों को आपस में कंपेयर करें तो भाई कोई माँ जो है वो बड़ी खूबसूरत होगी, कोई माँ जो है वो बड़ी काम काज के अंदर बड़ी यानी जबरदस्त मुस्तादी से काम काज करती होगी, कोई माँ जो है वो बड़ी अकलमंद होगी, ठीक है, हर काम के अंदर सही फैसले करती होगी, अच्छे फैसले करती होगी, कोई माँ जो है वो उसके अंदर कोई खूबी होगी, कोई माँ जो है किसी के अंदर कोई खूबी होगी, ठीक है। लेकिन जब बच्चा माँ देखता है तो उसके लिए जो उसकी अपनी माँ होती है ना वही अनफा होती है ना, अनफा यानी सबसे ज्यादा नफा पहुंचाने वाली, अगरचे कि उसकी माँ जो है वो दूसरी माओं के मुकाबले में ज्यादा हसीन ना हो, ज्यादा सलाहियत वाली ना हो, ज्यादा अकल वाली ना हो, ठीक है, ज्यादा खूबसूरत ना हो, लेकिन इस बच्चे के लिए जो सबसे ज्यादा नफा पहुंचाने वाली औरत है वो तो उसकी अपनी माँ ही हो सकती है ना। तो बिल्कुल यही मामला है, ये जरूरी नहीं कि आपके शेख जो है वो सबसे बड़े पीर हो दुनिया के, ठीक है, सबसे ज्यादा उनके अच्छे बयानात होते हो, सबसे अच्छे खूबसूरत आवाज में वो नाते पढ़ते हो, ठीक है, या सबसे ज्यादा जो है उनके बयान के अंदर लोग अटेंड करने वाले हों, ठीक है, या लोग ज्यादा रोने धोने वाले हों, ऐसा नहीं है जरूरी, ठीक है। आपका तो यानी आप ये इसके लिए भी हम वही डॉक्टर वाले इंसान इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप ये तो नहीं देखते ना कि क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है या नहीं है, अगर नहीं है तो मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, ऐसे तो नहीं देखते ना भाई। आपके इलाके में जो डॉक्टर मौजूद है आपको जब जरूरत पड़ती है तो आप उसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, बस ये देखते हैं कि वो कोई जाली डॉक्टर ना हो, उसके पास सर्टिफिकेशन हो और लोगों का उसके साथ अच्छा तजुर्बा ना हो, ये चंद बातें देखते हैं, ये तो नहीं देखते कि जी वो कितना बड़ा डॉक्टर है और कितने लोग जो हैं वो उसके रजिस्टर के अंदर एज अ पेशेंट रजिस्टर्ड है, ये सब बातें तो आप नहीं देखते ना। तो मकसूद जो है वो इस्लाह है और इसी को मकसूद रखना चाहिए, बाकी चीज़ों को मकसूद नहीं बनाना चाहिए। तो ये एक मेजर अदब है जो कि अपने शेख के साथ मुरीद को रखना होता है, ठीक है, कंपेयर नहीं करते रहना चाहिए दूसरे बुजुर्गों से अपने शेख को। क्या मुरीद के लिए राह सलूक पर मेहनत करने की इंतहा खिलाफत है, यानी इस्लाह हो गई इस बात की दलील क्या खिलाफत का मिलना ही है, और अगर किसी को खिलाफत नहीं मिली तो क्या वो लोगों को दीन के एतबार से नफा पहुंचाने पर लगाया नहीं जाता। नहीं, खिलाफत जो है वो अल्टीमेट लिमिट नहीं है इस्लाह की, ठीक है, इसके बारे में काफ़ी तफसीलें हैं। अब इसको इस मौजू के ऊपर क्योंकि जो सुनने वाले हैं वो अक्सर उनमें से जो है वो सिलसिले के अंदर नहीं है, ठीक है, तो इतनी तफसील तो शायद इस वक्त मैं ना बयान कर सकूँ, लेकिन चले आपने पूछा है तो थोड़ी बहुत कम अज़ कम कि जो असल क्राइटेरिया है ना इस्लाह का वो नस्बत होती है, ठीक है, अल्लाह ताला के साथ खसूसी नस्बत, और ये जो नस्बत होती है कनेक्शन, ये नस्बत भी जो होता है ना इसकी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, कमजोर नस्बत होती है एक, यानी नस्बत तो है लेकिन कमजोर है, ठीक है, इसकी बड़ी मिसालें हैं किताबों में लिखी हुई, हम डिस्कस करते रहते हैं। फिर एक नस्बत होती है जो इससे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, ताल्लुक ज्यादा पावरफुल, फिर एक नस्बत होती है और भी ज्यादा पावरफुल, फिर एक नस्बत होती है और भी ज्यादा पावरफुल, ठीक है, तो नस्बत के अंदर ये बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो मिनिमम जो इस्लाह का क्राइटेरिया है ना कि जी इस्लाह कुछ हुई है वो ये है कि आपको नस्बत की कम अज कम जो ताल्लुक है ना वो मिल गया, ठीक है, ये है क्राइटेरिया, खिलाफत मिला क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। अलबत्ता खिलाफत के बारे में फिर मजीद तफसीलात किताब में लिखी, हमारे की किताब में तो बाकायदा टेबल बना करके उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ये खिलाफत का क्या मतलब होता है, नस्बत का क्या मतलब होता है, और खिलाफत मिल गई नस्बत ना मिली ये नहीं हो सकता, लेकिन नस्बत मिल गई और खिलाफत तो मिली होती है, इस किस्म की बातें हैं, ठीक है, लेकिन ये फाइनल क्राइटेरिया अल्टीमेट क्राइटेरिया नहीं है। अलबत्ता जो आप कह रहे हैं कि खिलाफत अगर किसी को नहीं दी तो क्या लोगों को दीन के एतबार से नफा पहुंचाने पर लगाया नहीं जाता, तो नफा पहुंचाने पर लगाने का मतलब खाली ये नहीं होता कि उनको जिक्र करने के का हुक्म दिया गया, ठीक है, उनको जो है वो मजलिस होल्ड करने का हुक्म दिया गया या इजाजत दी गई, सिर्फ ये मतलब नहीं होता ना भाई, दीन का नफा जो है वो सिर्फ इस अंदाज में तो नहीं होता ना, दीन का नफा तो बहुत सारे अंदाजों में होता है, ठीक है। तो यानी इसको ये मत समझें कि जी खिलाफत के रास्ते से ही दूसरों को दीन का नफा पहुंचाया जा सकता है, ठीक है, ये जो सर्टेन यानी जॉब डिस्क्रिप्शन, ये जॉब डिस्क्रिप्शन खिलाफत के साथ इनकी इजाजत मिलती है, ठीक है, लेकिन बाकी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो उसके लिए खिलाफत की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो मशायख जो है वो खाली एक ही अंदाज से लोगों को दीन के काम पर नहीं लगाते, बल्कि बहुत सारे इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ शेड्स हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर ظاہری علوم کو پڑھانے پر لگایا, ٹھیک ہے, بخاری شریف ماشاءاللہ اپنے مریدین کو عالم بننے کے اوپر آمادہ کیا, وہ عالم بنے, وہ عالم بن کر کے وہ پھر لوگوں کو ظاہری علوم کا نفع پہنچا رہے ہیں, حدیثیں لوگوں کو پڑھا رہے ہیں, سنا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. خواتین, ٹھیک ہے, خواتین جو ہیں وہ ان کو تو خلافت ملنے کا کانسیپٹ ہمارے دین میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو خواتین کے ہاتھ کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتی, وہ تو کبھی بھی خلیفہ نہیں بن سکتی, ٹھیک ہے, جو سنت کی تعلیمات کے مطابق, رائٹ. آج کل تو خیر سب کچھ بن جاتی ہیں لیکن پراپر طریقہ تو نہیں ہے, نہیں ہے, تو پھر کیا خواتین کسی کو نفع نہیں پہنچاتی؟ پہنچاتی ہیں, 100% نفع پہنچاتی ہیں, تو اس کے ان کے پھر کیا طریقے ہوتے ہیں نفع کے؟ پھر وہ پھر ظاہری علوم میں بھی پہنچاتی ہیں, اور وہ جو ہے وہ اپنی صحبت میں بھی دوسری عورتوں کو جو ہے وہ صحبت کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ نفع پہنچاتی ہیں, اور ذکر بھی جو ہے وہ ان کو سکھایا جا سکتا ہے, وہ خواتین کو آگے ذکر کرنے کا طریقہ بھی سکھا سکتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں نفع پہنچانے کے دین کے اندر, ٹھیک ہے. چلیں آگے چلتے ہیں کہ اگر بے دین پیر سے تعلق ہو جائے, صحیح ہے, یعنی یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بات ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں جب ہم نے کون سی والی حدیث پڑھی تھی, آئی تھنک یہ آئینے والی ڈسکشن ہی میں ہم نے یہ نیت والا معاملہ پڑھا تھا کہ آپ کو جب اپنے مقصود تک پہنچنا ہوتا ہے تو آپ کو اس کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کا مقصود جو ہے وہ شہر کے دوسرے کونے میں, ٹھیک ہے, آپ وہاں جانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں جا کر کے آپ کچھ کریں, کچھ حاصل کریں, ٹھیک ہے. تو بھائی اگر آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے تو آپ وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے, تو آپ کو تو باہر نکلنا پڑے گا, آپ کو اپنی گاڑی گراج سے نکالنی پڑے گی, اس میں بیٹھنا پڑے گا, سڑک پہ جانا پڑے گا. اب جب آپ سڑک پر جاتے ہیں تو ایکسیڈنٹ کا احتمال ہمیشہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ایکسیڈنٹ جو ہے وہ آپ کی غلطی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, رائٹ, اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی, اگلے بندے کی غلطی تھی, وہ ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا, اس نے نہیں دیکھا ٹرن کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, تو آپ کی تو کوئی غلطی نہیں ہے لیکن اس کی غلطی ہے, لیکن ایکسیڈنٹ تو پھر بھی ہو گیا نا. تو پھر اس ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ایکسیڈنٹ سے تو ہم نہیں بچ سکتے, ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ خود محتاط ہوتے ہیں. تو اس معاملے میں خود محتاط ہونے کا کیا طریقہ ہے کہ جی یہ لوگ پیر کامل کی انہوں نے نشانیاں لکھی ہیں تو ان نشانیوں کو پورا کرتے ہیں, نیت کو صحیح کرتے ہیں اپنی, ٹھیک ہے. یہ وہ پریکاشنری میجرز ہیں جو ہم خود لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ پریکاشنری میجرز جو ہے وہ آپ دوسرے پر تو اپلائی نہیں کر سکتے نا, دوسرا بندہ تو اپنے حساب سے کام کرے گا, رائٹ. تو اس وجہ سے ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں نا وہ ہو جاتے ہیں, اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. اگر آپ کی نیت خالص تھی نا تو اس ایکسیڈنٹ سے بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے یعنی غلط پیر سے تعلق ہو جائے, ٹھیک ہے, تو پھر کیا کریں؟ اس کا بھی انہوں نے یعنی جس کو کہتے ہیں نا فورس میجور آر ایف پیز کے اندر لکھتے ہیں, رائٹ, یا ایگزٹ پوائنٹس لکھتے ہیں کہ جی ایگزٹ کرنے کا اگر پھنس گئے تو پھر ایگزٹ کیسے کریں اس کے اندر سے, اس سچویشن میں سے. تو اس کا طریقہ لکھا ہے کہ اگر غلطی سے کسی بے دین پیر سے تعلق ہو جائے یا پہلے وہ صالح تھا بعد میں بگڑ گیا, ٹھیک ہے, تو اس سے تعلق ختم کر کے کسی متبع شریعت بزرگ سے متعلق ہو جائے, ٹھیک ہے. تو فرما رہے ہیں کہ بگڑنے کا چانس جو ہے نا وہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بگڑنے کا چانس ہوتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. یہ تو ہمارا گمان ہوتا ہے نا کسی نیک شخص کے بارے میں کہ جی وہ نہیں بگڑے گا, لیکن ہمارا گمان جو ہے وہ ضروری تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہو, رائٹ, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, ہمارا گمان جو ہے وہ غلط ہو سکتا ہے. لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ جو کرنٹ سچویشن ہے, ایگزسٹنگ سچویشن ہے, ہم نے اس کے مطابق اچھا گمان رکھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ورنہ تو کیپیبلٹی تو ہر کے اندر ہے نا گڑبڑ کرنے کی. مثال کے طور پر یعنی ایک آدمی ہے, وہ ایک آدمی جو ہے وہ اچھا خاصا جس کو کہتے ہیں ہم شریف آدمی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ شریف آدمی کل کو کوئی غلط کام کر سکتا ہے, لیکن کیا اب آپ اس کی وجہ سے کہ وہ پاسبلٹی ہے کہ وہ کوئی غلط کام کر جائے گا, تو کیا اب آپ اس کے ساتھ ایسے رہنا شروع ہو جائیں گے جیسے کہ وہ آلریڈی غلط کام کر چکا ہے؟ ایسا تو آپ نہیں کر سکتے نا, ٹھیک ہے. تو یہی معاملہ جو ہے مشائخ کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بھئی جو کرنٹ سچویشن ہے نا ہم نے تو اس کے اوپر ان کے ساتھ گمان رکھنا ہے, کل کیا ہونے والا ہے کس کو پتا, وہ تو صرف اللہ کو پتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ایسا ہو گیا اور کنفرم ہو گیا کہ ایسا ہو گیا, ٹھیک ہے, کنفرم بھی کرنا ہوتا ہے, خالی گمان کے اوپر اور شبہات کے اوپر اور سنی سنائی باتوں کے اوپر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. تو فرمایا کہ اگر ایسا ہو گیا تو اس سے تعلق ختم کر کے کسی متبع شریعت بزرگ سے متعلق ہو جائے, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ہلکی سی بات کبھی کبھار پیر سے ہو جائے تو یوں سمجھے کہ آخر یہ بھی تو انسان ہے, ठीक है भाई, अगर वाकई कोई गलती उससे हो जाए, एक तो ये होता है ना कि गलती तो नहीं हो रही लेकिन हमें लग रहा है जैसे गलती हो रही है, ठीक है, क्योंकि हमारा इल्म मुकम्मल नहीं होता और हमें हमारा मुशाहिदा भी जो है वो कोई 6x6 तो अल्लाह ताला ने हमें बसीरत नहीं दी है ना, बसारत तो हमारी 6x6 हो सकती है जिसको कि आई साइट कहते हैं, ठीक है, लेकिन बसीरत जो होती है ये तो 6x6 नहीं होती है ना, बसीरत तो 6x6 या तो बहुत ही ज्यादा कोई अल्लाह ताला ने किसी को कशफ इल्हाम वाली कैफियत दी हुई हो, बहुत ही ज्यादा मुतब शरीयत और ऐसे हो जिनको कि शायद बसीरत भी 6x6 मिली हो, लेकिन अदरवाइज हमारे पास तो 6x6 बसीरत नहीं होती है ना, यानी परफेक्ट इंटरनल विजन हमारे पास तो नहीं होता ना। तो अक्सर ऐसा होता है कि जी शैतान जो है ना वो जो मुक्तदा लोग होते हैं ना, जिनकी लोग इक्तदा करते हैं यानी जिनकी लोग जो है वो इत्तबा करते हैं, ठीक है, तो उनको मुक्तदा कहते हैं यानी इमाम्स, राइट। तो शैतान जो है ना वो इमाम्स के खिलाफ जो है ना वो बदगुमान करने के ऊपर ज्यादा मेहनत करता है, ठीक है, इसी वजह से ना लोग जो है वो बड़ी आसानी से बदगुमान हो जाते हैं अपने मशायख की तरफ से, अपने उलमा, अपने साथ की तरफ से, क्योंकि शैतान इसके ऊपर खास मेहनत करता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो बात उसकी हो रही है कि जब कंफर्म हो जाए कि वाकई उनसे कोई 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 गलती हो गई, तो उसके ऊपर ये समझे कि भाई वो बहरहाल नेक है लेकिन है तो इंसान ही ना, तो इंसान तो खता का पुतला होता है और किसी भी इंसान से खता हो सकती है, तो मेरे शायद से क्यों नहीं हो सकता खता, ठीक है, तो फरिश्ता तो नहीं है, तो इससे गलती हो गई जो तौबा से माफ हो सकती है, ठीक है। जरा जरा सी बात पर एतिकाद खराब ना करे, अलबत्ता अगर वो इस खिलाफ शरा बात पर डटा रहे तो फिर ताल्लुक तोड़ दे, ठीक है। पीर के बारे में समझना कि उसको हर वक्त हमारी हालत का इल्म होता है बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है, ये जो लोग अक्सर सोचते हैं इस तरह से, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि देखें इस गुनाह का ताल्लुक जो है ना वो अकीदे के साथ भी है, ठीक है। आलिमुल गैब, गैब का इल्म रखने वाला, ये तो अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक नबी अलैहिस्सलाम सलाम के लिए जायज नहीं समझते, नबी अलैहिस्सलाम सलाम आलिमुल गैब थे, ये जायज नहीं समझते, राइट। इसी पर तो बहुत ज्यादा दूसरे मसलक वालों के साथ इख्तलाफ होता है, मसलक भी नहीं बल्कि अकीदा समझने, तो क्या भाई वो कहते हैं नहीं नबी अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब है, ठीक है, और हमारे उलमा जो है वो कहते हैं नहीं आलिमुल गैब नहीं है, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम के पास सबसे ज्यादा अखबारुल गैब है जो अल्लाह ताला ने उनको खबरें पहुंचाई, लेकिन गैब का इल्म होना एक दूसरी चीज है और ये जो है सिर्फ अल्लाह ताला की जात के पास है, ठीक है। तो फिर भाई अब जब नबी अलैहिस्सलाम के लिए भी इसकी इजाजत नहीं है तो फिर शेख के लिए इसकी इजाजत कैसे हो सकती है कि शेख को मेरे तमाम अहवाल का इल्म है, ठीक है, क्या हो रहा है मेरे साथ, शेख को जी सब कुछ पता हो जाता है, ठीक है, तो ये तो बहुत मेजर अकीदे का प्रॉब्लम हो गया ना। तो फरमाते हैं कि बहुत बड़ा गुनाह है, तो इस तरह से अजम्पशंस नहीं करनी चाहिए बल्कि राबता शेख के जरिए से उसको अपने अहवाल बताने चाहिए, ठीक है, और इस्लाह तभी होती है कि अहवाल बताते हैं और शेख को भी ये यकीन दिलाते हैं कि आप जब मेरी इस्लाह करेंगे ना तो मैं उसमें मैं उसको पॉजिटिवली लूंगा, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के तौर पर लूंगा और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करूंगा, इसी तरीके से अगर इस्लाह होती है। अच्छा, फरमाते हैं कि पीरी मुरीदी के मुतालिक ऐसी किताबें कभी ना देखें जिनका जाहिरी मतलब खिलाफ शरा है, ठीक है, यानी ये लोग किताबें देखने का आज के दौर में खुसूसन ज्यादा हमें शौक है ना, तो उसमें फिर हम ये नहीं देखते कि जी कौन सी किताब हमारे लिए मुनासिब है और कौन सी किताब जो है ना वो हमारे लिए नुकसानदेह बन सकती है, ठीक है, तो फिर हम यानी स्पेशली जब अगर कोई तसव्वुफ के रास्ते पे चलता है तो फिर चूंकि किताबें पढ़ने का शौक है तो अब तसव्वुफ किसी भी किताब के टाइटल में नजर आए उसको खरीद करके पढ़ना शुरू कर देते हैं, अब उसके अंदर तो पता नहीं सही अकीदे वाले ने लिखी है। आज के दौर में तो बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स हैं जिन्होंने के सूफीज्म और तसव्वुफ के ऊपर किताबें लिखी हुई हैं, अब उस नॉन मुस्लिम से आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी बातें उनकी हो सकता है ठीक भी लिख दी हो और बहुत सारी बातें गलत भी लिख दी हो, ठीक है, अब आपको तो नहीं पता ना तफसील, तो आप फिर उसमें से कैसे जज करेंगे कि कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है, आपके पास इतना इल्म नहीं है अभी, ठीक है, तो खिलाफ शरा अगर उन्होंने बातें लिखी हुई है ना तो ऐसी किताबों को नहीं देखना चाहिए, बल्कि तरीका तो यही है कि जब इंसान इस रास्ते के ऊपर इस्लाह के कदम उठाता है ना तो अब उसको शेख के मशवरे से ही जो है ना वो किताबें देखनी भी चाहिए ताकि वो जो है वो बदगुमानियों का और बदएतकादियों का शिकार ना हो जाए। भाई डॉक्टर आप इलाज करवाए ना तो इलाज के अंदर फिर परहेज की भी तो जरूरत होती है ना, इलाज तो आप करवा लीजिए डॉक्टर साहब से लेकिन बदपरहेजी खूब कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो इलाज तो आपको फायदा नहीं देगा ना, तो उसके ऊपर लोग परेशान हो जाते हैं कि जी ये तो फिर बांध दिया, बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। भाई रिस्ट्रिक्शंस कोई नहीं लगाई, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, ठीक है, करना आपने वही जो आप चाहते हैं, ठीक है। लेकिन डॉक्टर का तो काम है ना कि आपके लिए खैर ख्वाही का मशवरा दे कि भाई अल्लाह के बंदे तुम इतना मेहनत कर रहे हो इलाज में, तो अल्लाह के बंदे थोड़ा सा परहेज भी कर लो, परहेज कर लोगे तो तुम्हारा इलाज जल्दी हो जाएगा, तुम्हारा अपना फायदा है इसके अंदर। तो ये रिस्ट्रिक्शंस लगाना जो है वो कोई उनको पैसे को थोड़ी मिल रहे होते हैं इसके लिए रिस्ट्रिक्शन लगा रहे होते हैं, तो आपकी खैरख्वाही के अंदर आपको मशवरा दे रहे होते हैं, आपकी मर्जी माने ना माने वो तो आपके किस्मत है, ठीक है। इसी तरह जो अशार खिलाफ शरा है उनको कभी ना पढ़े, खिलाफ शरा अगर अशार है तो अवामुन नास जो है ना वो तमीज नहीं कर पाते चीजों के अंदर, ठीक है। वरना खिलाफ शरा अशार का मालूम करना ये भी एक इल्म मांगता है, ठीक है, वरना जाहिरी अल्फाज से भी पता नहीं लगता कि ये शेर वाकई खिलाफ शरा है कि ये खिलाफ शरा नहीं है, ठीक है। हजरत हसान बिन साबित रजी अल्लाह तआला शायर रसूल राइट, किताब में अपने अपने शेर में लिखते हैं जो कि आपने सुना ही होगा, मौलाना तारिक अमीन साहब ने भी उसको बखूब बयान करते हैं, और जुनैद जमशेद मरहूम उन्होंने भी जो वो शेर यानी जलवाए जाना जो उनकी है नज़म उसके शुरू में पढ़ा, को उसका क्या मफहूम है कि ऐसा लगता है कि गोया के अल्लाह ताला ने आपसे पूछ करके आपको बनाया, ठीक है। तो भाई ये बजायर को ये कह सकते हैं ना कि ये किस किस्म की बात हो रही है कि जी अल्लाह ताला ने पूछ के आपको बनाया, ठीक है। लेकिन वो कौन थे? शायरे रसूल थे, ठीक है। और शायरे रसूल ने जो जो शेरी शायरी करी है तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अप्रूवल के खिलाफ तो नहीं जो हो सकती ना, तो जाहिरी अल्फाज से पता नहीं लगता। तो इस वजह से चूंकि हम तो इल्म रखने वाले नहीं होते हैं तो हमें शुरू में ना कम से कम एहतियात करनी होती है, और यानी बड़ों की गाइडेंस के साथ ही मुताला किया करें। बाज़ लोग कहते हैं कि शरीयत और चीज़ है और तरीकत यानी पीरी मुरीदी और चीज़ है, यानी शरीयत के उसूल जो है वो पीरी मुरीदी में नहीं चलते और पीरी मुरीदी के उसूल जो है वो शरीयत में नहीं चलते, ये बिल्कुल खराफात है। तो इसको फरमाते हैं कि ये लोग गुमराह हैं, इन्हें झूठा समझना फर्ज है, ठीक है। हमारे मशायख खुसूसन मशायख उलमाए देवबंद जो हैं उन्होंने इस बात को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर किया है कि नहीं, शरीयत जो है वो अफजल है, शरीयत मकसूद है और तरीकत शरीयत की लौंडी है, ठीक है। ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि तरीकत का मकसद क्या होता है कि शरीयत के रास्ते पे आपको असिस्ट करना, ये नहीं कि शरीयत को तोड़ करके कोई नया काम करना शुरू हो जाना, ठीक है। तो फरमाते हैं क्या, बस ये पैराग्राफ मुकम्मल कर लेते हैं कि अगर पीर किसी खिलाफ शरा बात का हुक्म दे तो उस पर अमल भी दुरुस्त नहीं है, ठीक है। ला ताअता लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, ठीक है। इसके अंदर जो मखलूक का लफ्ज है ना, ये मखलूक हर एक के ऊपर अप्लाई होती है, चाहे वो उस्ताद हो, चाहे पीर हो, चाहे शेख हो, चाहे माँ बाप हो, हर एक के ऊपर ये चीज़ अप्लाई होती है कि अगर अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वो हुक्म कर रहा है तो फिर उसका हुक्म नहीं माना जाएगा, उसकी अतात नहीं की जाएगी। अगर वो इस पर जिद करे तो इससे ताल्लुक खत्म कर दे, ठीक है। यहाँ पर आज की क्लास में रोकते हैं, आपका सवाल देख लेता हूँ। मौलाना किसी शेख ने उनके शेख ने निस्बत खिलाफत वापस ले ली, लेकिन उन्होंने अपने मुरीदों को नहीं बताया कि मेरे पास अब खिलाफत बाकी नहीं है, तो क्या मुरीदों को जो उससे जुड़े हैं नफा पहुंच सकता है और इसलाह हो सकती है? आप ये खिलाफत वापस लेने के इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? तो देखें, इसके अंदर ना फिर जो दीन का उसूल है और हदीस कुदसी से जो कि हमें मिलता है, और मशायख इस बात को हमें समझाते भी हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अना इंदा गुन्न अब्दी बी, कि मैं अपने बंदे के साथ वैसे ही मामला करता हूँ जैसे कि वो मेरे साथ गुमान रखता है, ठीक है। तो ये जो गुमान है ना, इस गुमान की बड़ी फिजिकल वैल्यू है हमारे दीन में, ठीक है। तो अगर उनको नहीं मालूम कि ये जो शेख हैं इनके पास तो अब निस्बत है ही नहीं, अब तो इनके पास खिलाफत है ही नहीं, यानी इनका जो रूहानी ताल्लुक ऊपर से बना हुआ था वो तो अब खत्म हो चुका है, ठीक है। इनको तो अब मुरीदों को तो नहीं मालूम ना ये बात, तो उनका तो गुमान है कि उनके पास है, ठीक है। तो नफा पहुंचाने वाली जात शेख नहीं होता, ये बात कान खोल कर सुन लें और हमेशा याद रखें, नफा पहुंचाने वाली जात शेख नहीं होती, नफा पहुंचाने वाली जात अल्लाह ताला ही होता है, शिफा देने वाली जात अल्लाह ताला ही की जात है, ठीक है। तो अल्लाह ताला जो है ना वो अपने हर बंदे के गुमान को जानते हैं, हर बंदे की नियत को जानते हैं, ठीक है। तो वो उनको उसके उनके गुमान के मुताबिक, और हमारे मशायख ने ये वाकयात बाकायदा किताबों में लिखे हैं, हत्ता कि यहाँ तक लिखा है हमारे अपने हजरत की किताबों के अंदर मौजूद है ये वाकया, और दूसरे मशायख की किताबों में, कि एक डाकू
डाकू था, उसके पास कुछ काम नहीं था, बूढ़ा हो गया, तो किसी ने मशवरा दिया तुम पीर बन के बैठ जाओ। वो किसी ऐसी जगह पर गया जहां उसको कोई जानता नहीं था और वो साहब बन गया कोई पीर। ठीक है, अब लोग तो लोग होते हैं, अवाम होते हैं, वो आए उसको देखा इबादत करते हुए नेकी के रास्ते के, देखा उन्होंने सारे क्राइटेरिया चेक नहीं किए, वो उसके मुरीद बनने शुरू हो गए। ठीक है, तो मुरीद ऐसे बने, वो ऐसे खालिस लोग थे कि उनको नफा होना शुरू हो गया। ठीक है, और नफा हो करके बिल आखिर जाना ये मकाम आया कि उनको अल्लाह ताला ने उनके दिल में इल्हाम फरमा दिया कि ये शेख के पास कुछ नहीं है। ठीक है, उस दिन जो है ना, वो जो डाकू साहब थे जो कि शेख बन के बैठ गए थे, उन्होंने भी, उनको भी बड़ा अफसोस हुआ, बहुत उनको नदामत हुई कि मैंने झूठ बोला लोगों से। उन्होंने जो है ना वो अपने मुरीदों को बता दिया कि जी मैं तो असल में डाकू था, मैं तो ऐसे बन के बैठा हुआ यहाँ पर। ठीक है, लेकिन उस वक्त तक अल्लाह ताला ने मामला ऐसा किया था कि उनके साथ ऐसा मामला हो गया था कि फिर आपको पता है, आपने कहानी सुनी होगी। ठीक है, तो गुमान का मामला होता है। ठीक है, चले जदा खूना खैर, यहाँ क्लास खत्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।